बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 12 मई, दिन शनिवार। मैं हूं आदर्श राठौर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के अधिकारियों और जवाहरलाल नेहरू के मत विरोधों का जिक्र किया। राजनीति के अखाड़े में फौज का जिक्र कितना उचित है? क्या सेना को राजनीति से अलग नहीं रखा जाना चाहिए? इस बार इंडिया बोल में इसी पर होगी चर्चा। अपनी राय रखने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1800 102 7001 पर। मेरे साथ चर्चा में शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश और रक्षा मामलों के जानकार राहुल बेदी। लेकिन उससे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। मिस्र ने घोषणा की है कि वह 4 दिन के लिए गजा के साथ लगने वाली अपनी सीमा खोलने जा रहा है। इसकी शुरुआत आज से ही हो जाएगी। इस सीमा को मिस्र ने इस वजह से बंद कर दिया था क्योंकि उसे डर था कि गजा की सीमा से चरमपंथी उनके क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने कहा है कि वह बेहद महत्वपूर्ण केरेम शालोम क्रॉसिंग पॉइंट को अस्थायी तौर पर बंद कर रहा है। इसराइली सेना का कहना है कि फिलिस्तीनी विद्रोहियों की वजह से इलाके को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। कर्नाटक की 224 में से 222 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान किया गया। कर्नाटक विधानसभा में सत्ताधारी कांग्रेस, भाजपा और जनता दल सेक्युलर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मतदान शांतिपूर्ण रहा। शाम 5 बजे तक कुल 64.5% वोटिंग दर्ज की गई। अधिक जानकारी के साथ बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
कर्नाटका के मतदाताओं ने आखिरकार अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर दिया। वैसे तो मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, हालांकि बेंगलुरु के हिब्बाल क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण चुनाव आयोग यहां फिर से चुनाव करवाएगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक करीबन 70% से भी ज्यादा मतदान हुआ है, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बहुत सारे मतदाता 6 बजे भी मतदान करने के इंतजार में खड़े थे। इस चुनाव का नतीजा मंगलवार को आ जाएगा।
ये थे बेंगलुरु से इमरान कुरैशी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में शुक्रवार को दो पक्षों में हिंसक झड़प होने के बाद धारा 144 लागू कर दी गई, साथ ही पूरे इलाके में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त मिलिंद भारांबे ने कहा है कि इस घटना में 2 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि शुक्रवार रात 10:30 बजे पानी का कनेक्शन टूटने के बाद विवाद शुरू हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक पर ट्रैवल बैन यानी देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि बुधवार को आए चुनाव नतीजों में हार का सामना करने के बाद नजीब ने इंडोनेशिया जाने के लिए टिकट बुक करवाई थी। नजीब पर आरोप है कि उन्होंने साल 2015 में सरकारी निवेश से जुड़े करीब $700 मिलियन निकाल लिए थे। हालांकि बाद में उन्हें तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन अब नए प्रधानमंत्री महातिर ने इस मामले की दोबारा जांच करवाने की बात कही है। नजीब रज्जाक ने UMNO पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वे अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को भी बेबुनियाद बताते रहे हैं। नजीब रज्जाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम नतीजों से बेहद दुखी हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने हमेशा ही राजनीतिक मूल्यों को बचाए रखने की कोशिश की। हम जनता के फैसले को दिल से स्वीकार करते हैं। शायद यह हमारे लिए एक मौका है कि हम अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें और आगे आने वाले वक्त में कैसे मजबूत हों, इस पर काम कर सकें। ये थे मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वह 23 मई को जब अपने परमाणु परीक्षण क्षेत्र को निष्क्रिय करेगा तो उस समय वह सुरक्षा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी आमंत्रित करेगा। सरकारी चैनल KCNA के मुताबिक इस प्रक्रिया में धमाके के जरिए सुरंग को खत्म कर दिया जाएगा, साथ ही रिसर्च बिल्डिंग को भी बंद कर दिया जाएगा। बुरुंडी सरकार के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में हुए एक हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। बुरुंडी के रक्षा मंत्री ने बताया कि यह हमला चरमपंथियों ने किया था जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो से सीमा पार कर बुरुंडी में प्रवेश कर पहुंचे थे। चश्मदीद गवाहों के अनुसार हमलावर समूह में थे और उन्होंने घर घर जाकर लोगों को गोली मारी और चाकू से उनकी हत्या करने के बाद घरों में आग लगा दी। BBC समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी इंडिया बोल, मेरा नाम है आदर्श राठौर। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं 1811-7000 और 1811-7001 पर आप मुफ्त फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश और रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विषय एक बार फिर बता दें, राजनीति के अखाड़े में फौज का जिक्र कितना उचित है? क्या सेना को राजनीति से अलग नहीं रखा जाना चाहिए? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के अधिकारियों और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच मतभेदों का जिक्र किया। एक सभा में उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल के एम करियप्पा और जनरल के एस थिमैया का कांग्रेस सरकार ने अपमान किया था। एक बार सुने उन्होंने क्या कहा था।
1948 में पाकिस्तान से युद्ध जीता जनरल थिमैया जी के नेतृत्व में, लेकिन उस पराक्रम के बाद कश्मीर को बचाने वाले जनरल थिमैया का उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने बार बार अपमान किया था और इसी के कारण जनरल थिमैया को अपने पद से सम्मान के खातिर इस्तीफा देना पड़ा था। मैं कर्नाटक की नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस का रवैया देश के सेना के मुखिया के प्रति रहा है।
इससे पहले कि हम कार्यक्रम में श्रोताओं की टिप्पणियों को और उनकी राय को शामिल करें, रक्षा मामलों के जानकार राहुल बेदी हमारे साथ हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कर्नाटक में कहा, क्या सेना को लेकर किसी चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा कहा जाना चाहिए?
पहली बात तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र किया ये दोनों जनरल का, ये थोड़ी हिस्ट्री में इन्होंने थोड़ी डिस्टॉर्शन लाए हैं, क्योंकि कश्मीर के जंग में जनरल करियप्पा थे और चाइना के जंग से पहले जनरल तमैया थे। जनरल तमैया कश्मीर में हालांकि वो शामिल थे, मगर उन्होंने कश्मीर का जो भी हासिल हुआ या जो भी कश्मीर का आउटकम हुआ वो जनरल करियप्पा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दूसरी बात जो आपका सवाल है उसमें ये बहुत खराब चीज है, क्योंकि फौज एक गवर्नमेंट का एक बहुत क्रूशल और क्रिटिकल हिस्सा है और उसको पॉलिटिक्स के बाहर बहुत जरूरी है रखना, क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान का हमने देख लिया है, बांग्लादेश का भी, पहले हमने जब इंडिपेंडेंस हुई बांग्लादेश की तो तब भी फौजी राज रहा, तो ये एक बड़ी क्रिटिकल बात है कि फौज को पॉलिटिक्स के बिल्कुल बाहर रहना चाहिए और पॉलिटिक्स के साथ
यानी बिल्कुल इससे बाहर रहना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश भी हमारे साथ हैं। उर्मिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था तब सर्जिकल स्ट्राइक का खूब जिक्र किया गया था और उस वक्त भी सवाल उठे थे, मगर अब प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में जो कहा कि यहां से संबंध रखने वाले सैन्य अधिकारी को अपमानित किया गया था, क्या चुनाव प्रचार के दौरान सेना को लेकर ऐसी बातें करना ठीक है?
देखिए, इसमें दो पहलू मुझे नजर आते हैं जो बड़े खतरनाक संकेत देते हैं। पहला तो ये कि जो फैक्चुअली जो सही चीजें नहीं है उनको देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा आदमी जो सबसे एग्जीक्यूटिव पद है, तो सबसे बड़ा जो देश का कार्यकारी पद है सबसे बड़ा, उस पद पर बैठा आदमी अगर ज्ञान के बजाय अज्ञान बांट रहा है, अगर तथ्य के बजाय अगर असत्य बता रहा है, अगर सूचना के बजाय अपसूचना दे रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत खतरनाक बात है। वो कह रहे थे कि हम कर्नाटक की नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं। अब कर्नाटक या देश की नई पीढ़ी को अगर आप गलत बातें बता रहे हो हिस्ट्री के बारे में, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत खतरनाक है और उन लोगों का मन बढ़ेगा, उन लोगों को ज्यादा आप उत्साहित करेंगे जो इस देश में इतिहास, समाज, समाजशास्त्र, विज्ञान और तमाम चीजों के बारे में उत्पटांग चीजें बता रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है जो प्रधानमंत्री जी ने जो आम तौर पे देश में कोई भी निर्वाचित प्रधानमंत्री इस तरह की बात नहीं करता कि वो तथ्य हिस्ट्री का गलत बताए, पहला। दूसरी बात कि आर्मी का जिक्र करना या आर्मी का उपयोग करना अपने राजनीतिक मकसद से, ये देखिए मैं समझता हूँ कि पहले भी कभी कभी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा हो रहा है, लेकिन आर्मी का अगर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो इसका लोकतंत्र अभी यूरोप के बहुत सारे लोकतांत्रिक मुल्कों की तरह बहुत प्रौढ़ नहीं है, एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं या एक विकसित होती हुई डेमोक्रेसी कह सकते हैं, इसकी बहुत सारी अपनी कमजोरियां हैं, धीरे धीरे अभी चीजें जड़ जमा रही हैं डेमोक्रेसी की, उसमें अगर सेना को आप लाते हैं और बार बार उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके हवाले देशभक्ति जगाने की कोशिश करते हैं, अपने राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की, वोट में तब्दील करने की कोशिश करते हैं अगर आर्मी के किस्सों को सुनाकर सेंटिमेंट उभारते हैं लोगों का, तो मैं समझता हूँ कि ये वही गलती है जो कई मुल्कों ने हमसे ज्यादा जो जहाँ डेमोक्रेसी कमजोर थी उन देशों ने आज बहुत
जी जी उर्मिलेश
बिल्कुल तो ये दो पहलू बड़े खतरनाक मुझे नजर आ रहे हैं
जी। इस पे आगे भी बात करेंगे लेकिन इस वक्त हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम बताएं और इस विषय पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय रखें।
सर नमस्कार, मैं जसबीर बोल रहा हूँ रुपाणा गंगा सिरसा से जी। सर मेरा ये मानना है कि मतलब एक तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए कहीं ना कहीं आर्मी को पॉलिटिकल रैलियों में इस तरीके के ध्यान नहीं देने चाहिए, ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए ये गलत बात है, कहीं ना कहीं इशू कंसेप्चुअल बातें भी नहीं हो रही है।
जी जसबीर शुक्रिया, आपने आपने अपनी बात रखी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े, जल्दी से अपनी अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
सर नमस्कार
जी, नमस्कार, नाम बताएं और अपनी राय रखें।
मैं स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से मैं बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। और किसानों और सेनाओं पे मतलब राजनीति तो होना ही नहीं चाहिए, मोदी जी को या किसी भी कोई भी प्रधानमंत्री बने तो इन दोनों पे तो राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि जय जवान तो जय किसान है ना सर, ये नारा बहुत अच्छा है, पर तो इस पर राजनीति ना हो तो बहुत अच्छा लगेगा हमें।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें। चलिए वापस श्रोताओं के पास आएंगे, लेकिन जिस तरह से राहुल आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि और भारत और पाकिस्तान जब बने तो दोनों देशों की सेनाओं के जो कायदे थे वो वही रहे जो ब्रिटिश आर्मी के थे, लेकिन देखने को ये मिला कि पाकिस्तान में सेना का राजनीति में बहुत ज़्यादा दखल है लेकिन भारत में ऐसी नौबत नहीं आई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये नेहरू की विरासत है। आप किस तरह से देखते हैं इसको कि यहाँ पर सेना अपना काम अपने काम से काम रखती है और राजनीति से उसे कोई लेना देना नहीं था?
आप मेरे से पूछ रहे हैं
जी राहुल?
बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। आर्मी जैसे मैंने पहले कहा, मिलिट्री जो है आर्मी नहीं, मिलिट्री जो पूरी है उसका वास्ता डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है, मगर उसका ए पोलिटिकल उसका सियासत में उसकी उसको देख जैसे कहते हैं शुड बी सीन बट नॉट हर्ड, मगर हम पिछले कुछ सालों से और पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो आर्मी चीफ करता है या एयरफोर्स का चीफ करता है या जो नेवी का चीफ कर रहा है वो एक बड़ी नेगेटिव चीज है, और ये इससे पॉलिटिक्स खेलना बहुत खतरनाक बात है और इनको पूरा पूरी तरह से एपॉलिटिकल रहना चाहिए।
जी राहुल, उर्मिलेश आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि हाल के सालों में ऐसा चलन बढ़ा है कि चुनावों में सेना को मुद्दा बनाया जाने लगा है, और ऐसी भी खबरें आई जब पिछले दिनों सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कश्मीर या उत्तर पूर्व से जुड़े मसलों पर ऐसे बयान दिए जिन्हें ये माना गया कि ये राजनीतिक बयान है और देश की सरकार या जो सरकार की नीति है उससे थोड़ा अलग होकर किसी पार्टी की विचारधारा से ज़्यादा जुड़े हैं, तो क्या ये चिंता का विषय होना चाहिए?
बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये यह भी एक गहरी चिंता हमारे लोगों को होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी को बचाए रखना चाहते हैं और इसको बढ़ाए रखना चाहते हैं। देखिए कश्मीर के हवाले भी कई बातें ऐसी हाल के दिनों में कही हैं, नॉर्थ ईस्ट को लेकर कही गई हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह देश के बड़े जो सियासतदान हैं जिस तरह की आर्मी को लेकर बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो आर्मी को मोबिलाइज करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में, या भविष्य में कोई उनकी बड़ी परियोजना है, बड़ी योजना कोई है जिसकी वजह से वो आर्मी के टॉप लीडरशिप को एक तरह से उनका उसका उसको उसको खुश करना चाहते हैं या अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ये खतरनाक है, स्टेट और आर्मी ये एक दूसरे के हिस्से हैं, स्टेट का हिस्सा आर्मी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, वो एक हमारी सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है? तो ये बात कम से कम जो सियासतदान है उनको समझनी चाहिए। और अभी बीच में जो हमारे आर्मी के बड़े पोहदेदारों ने बयान दिया है हाल के दिनों में कश्मीर को लेकर, वो एक शुरुआत है कि जो बात राजनीतिक लोगों को करना चाहिए वो आर्मी के बड़े बड़े ओहदेदार कर रहे हैं।
उर्मिलेश जी, उर्मिलेश दो श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जी अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें इस विषय पर।
नमस्कार सर, मैं बूढ़ा मलाड से गांव राम जी का बोल जिला बाड़मेर से हरीश बैठ बात कर रहा हूं सर।
जी हरीश,
जब राजनीतिक आती है, जब ये जो नेता लोग जो सेनाओं के बीच में डालते हैं, वो उनकी सरासर गलती है कि पत्ते गिर सकते हैं पर पेड़ नहीं, पत्ते गिर सकते हैं पर पेड़ नहीं, धरती सूख सकती है पर दरिया नहीं। कहते हैं कि ठोकर दर दर की ठोकरे खाने से अपने जो सेना है, जो देश की रक्षा करते हैं, उनको राजनीति के बीच में डालते हैं। वो सेनाएं जो अपने लिए कर्तव्य को निभाते हुए, जो ये राजनीति के लोग जो जितने भी है, वो अपने बीच में जो सेनाओं का मुद्दा बनाते हैं, वो इनकी गलती है सरासर। और
जी, आपका कहना है कि ये उनकी गलती है। हमारे साथ एक और श्रोता है जी, अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें।
नमस्कार सर, मैं पहला जाकर बात कर रहा हूँ बागोड़ा जालोर से।
जी
सर, सेनाओं को राजनीतिक जैसे गंदे मुद्दे से दूर रखना चाहिए, मेरा ये विचार है।
जी बहुत बहुत तो शुक्रिया अपनी अपने इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उर्मिलेश आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि सेना की उपलब्धियों को इस तरह पहले भी या सेना को इस्तेमाल किया जाता रहा है चुनाव में, कोई उदाहरण आप देना चाहेंगे पहले भी इस तरह से कोई इस्तेमाल किया, आपका लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता में।
नहीं, चुनाव में, चुनाव की बात मैं नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि पहले भी सरकारों ने आर्मी के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी की है, कई बार गलतियां हुई हैं। और मैं आपको याद दिलाऊं, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले जो प्रधानमंत्री जाहिर है वो एक बड़े कद्दावर नेता थे और भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं स्वयं उनके बहुत सारे कामों का प्रशंसक हूं, लेकिन उनसे भी इंडो चाइना वार के समय गलतियां हुई, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने, खासकर कुछ सीनियर जर्नलिस्टों ने, जिसमें कुछ जीवित हैं और कुछ अब जीवित नहीं है, उन्होंने ब्यौरेवार अपनी किताबों में, अपने रिपोर्टाज में वो चीजें लाई हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैं अभी कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके अभी एक श्रोता ने एक सवाल उठाया, लेकिन न तो राजनीति गंदी चीज है और न तो हमारा कोई हमारी हमारी कोई मशीनरी गंदी चीज है। मैं एक बात कह रहा था कि पॉलिटिकल जो काम जो 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 पॉलिटिशियंस को काम करना चाहिए, वो आर्मी के अहदेदारों को नहीं करना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल हुडा जब वो आर्मी कमांडर थे वहां पर 15वीं कोर के श्रीनगर में, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि देखिए कश्मीर का मसला एक पॉलिटिकल मसला है, इसका हल पॉलिटिकल ढंग से होना चाहिए। आज कुछ लोग सोच रहे हैं कि आर्मी हल कर देगी, मैं नहीं समझता कि कश्मीर का मसला आर्मी हल कर देगी, ये पॉलिटिशियंस का मसला है, राजनीतिक मसला बुनियादी तौर पर है। इन चीजों को हमारे सियासतदानों को देखना चाहिए।
जी राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बहस उठी है कि सेना और राजनीति का एक, मतलब एक तरह से जो घालमेल करने की कोशिश की जा रही है, कभी एक तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है, जब राजनीति होती है सेना को लेकर, तो उसका सेनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, सेना पर उसका बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमने पीछे देखा है जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुई है, कि जब जनरल रावत अपॉइंट हुए हैं तो नॉर्मली पिछले 25-30 साल से सीनियोरिटी प्रिंसिपल के मुताहत ही ये अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं, मगर पिछले 3-4 साल से हम यह देख रहे हैं कि इसमें भी कुछ बदलाव आ गया है और जो सीनियर मोस्ट जनरल थे, जनरल बख्शी, उनको अपॉइंट नहीं किया गया और जनरल रावत को अपॉइंट किया गया। तो इसमें भी जो अपॉइंटमेंट्स की पोलिटिसाइजेशन है, उसमें डाइल्यूशन ऑफ अथॉरिटी जो है, जो इनकी इनकी अथॉरिटी फौज की होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन थोड़ी पॉलिटिसाइज हो जाती है।
लेकिन राहुल, सवाल तो उस वक्त भी उठे थे जब कहा जा रहा था कि जब थिमैया को जनरल बनाया गया था, तो उस वक्त भी दो उनके सीनियर ऑफिसर थे, उनके उनके उनको नजरअंदाज करके उनको
थिमैया के बाद भी जनरल सिन्हा को नहीं बनाया, मिसेस गांधी ने चीफ और जनरल वैद्य को बनाया, तो ये चीजें तो हैं, मगर तब भी सवाल उठे थे और अब भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर आपका जो एक एक रवैया है, आपका जो एक प्रिंसिपल है सीनियर मोस्ट, क्योंकि जो आर्मी में इनकी सिलेक्शन होती है, ये बड़ी सख्त सिलेक्शन होती है, और जो सीनियर मोस्ट होता है वो नॉर्मली डिजर्विंग ही कैंडिडेट होता है, और इसकी जो अगर आप इसको इससे छेड़खानी करें तो इसमें थोड़ी डिमोरलाइजेशन आ जाती है रैंक्स में, और किसी को मालूम नहीं होता कि अभी चीफ कौन बनना है, आर्मी कमांडर कौन बन रहा है। तो ये पॉलिटिशियंस की अगर फेवरेटिज्म पे चली बात, तो ये ऑपरेशनल मामलों में ये बात नेगेटिव इम्पैक्ट करती है।
जी राहुल, हम अब श्रोताओं का रुख करेंगे, फोन लगातार वो हमें कर रहे हैं। जी अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें, इस विषय पर क्या कहना है आपका?
हेलो आदर्श जी और बेदी जी, आपको मेरा नमस्कार।
जी
जी सर, मैं गांव टूंकिया तहसील सिंदरी जिला बाड़मेर राजस्थान से बीबीसी का निमित्त श्रोता कृष्ण कुमार डावी बात कर रहा हूँ सर।
जी कृष्ण कुमार जी।
जी सर, मैं आपको ये बताना चाहता था, आज जो आपने विषय बहुत अच्छा रखा है कि सरकारें तो चलो सर आती रहती है, कितनी सरकार आएगी कितनी सरकारें जाएगी, पर जो अब ये सेना के बारे में जो मुद्दा रखा है सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेना को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए सर। और एक बात और कहना चाहता सर, जैसे कोई प्रधानमंत्री देश के लिए कुछ भी जितना भी योगदान देके गया सर, उनके बारे में जो प्रधानमंत्री जी आते हैं, फिर वो उनके बारे में प्रधानमंत्रियों के बारे में भी जो सर जो कुछ किया है वो देश के लिए किया है, उनके बारे में भी जो फिर बाद में बयान देने बहुत गलत साबित होते हैं सर, अच्छा नहीं लगता है इसमें।
जी बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता हमारे साथ हैं। जी
जी नमस्कार, मैं गौरव पांडे सौसा पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ।
जी गौरव नमस्कार।
जी मेरा ये सवाल है उर्मिलेश जी से, मेरा सवाल है कि जिस तरह से सेना अपना काम कर रही है तो इसका क्रेडिट सेना को न जाकर मोदी जी ले रहे या फिर कोई राजनीतिक दल ले रहा है, तो इससे क्या उनका मनोबल टूटता है, कितना मनोबल टूटता है या कितना मनोबल ऊपर जाता है, या फिर मीडिया में जिस तरह की बातें आती है सेना को लेकर, तो उससे क्या मीडिया सर्जिकल स्ट्राइक को हिले तो उससे कितना असर होता है सेना के मनोबल पर, ये सवाल उर्मिलेश जी से।
जी जी उर्मिलेश जी आपसे सवाल है।
हाँ देखिए, आजकल एक नया ट्रेंड चला है जो 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि आर्मी के बारे में ये बार बार कहना कि हमने ये करा दिया वो करा दिया। अब सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर ही जिस तरह की बातें की गई पूरी दुनिया में, मैं नहीं समझता कि किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी बड़ा जो राजनेता है जो सत्ता में है वो इस तरह की बातें सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में देश में विदेश की धरती पर जाकर इस तरह की बातें प्रचारित करता हो। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात जैसी हुई थी, और भी बहुत सारी बातें होती रही हैं, आर्मी के ऑपरेशन तरह तरह से होते हैं, हम ये सब जानते हैं। लेकिन आजकल जो सियासत में लोग हैं, जो सत्ता में लोग हैं, वो जिस तरह की बातें आर्मी को लेकर कर रहे हैं और प्रचारित कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, वो चिंताजनक है। इसलिए जो सवाल पूछने वाले सज्जन हैं, मैं मानता हूं कि उनकी जो चिंता है वो वाजिब है और हमारे देश के बहुत सारे नागरिकों की ये चिंता है।
जी और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। जी अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
सर मेरा नाम दिनेश कुमार है।
जी दिनेश।
और मैं शोध छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ। ठीक है सर, तो जो आज का मुद्दा है ये आर्मी की बात है प्रचार में, तो सर मेरा मानना यह है कि अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो आप स्वास्थ्य की बात करें, आप रोजगार की बात करें, आप शिक्षा की बात करें, न कि सेनाओं को लेकर के आप किसी से। तो सेनाएं अपना काम कर रही, उनको अपना काम करने दीजिए और जो आपका काम है वो आप करिए, मेरा ये मानना है सर।
शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
मैं पंडित मनोहर शिम्बाल पिपरी तहसील पुसद जिला यवतमाल महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ।
जी
जो सेना, जो भारत की सेना है और प्रधानमंत्री जी है, ये जो देश के सेना को जो राजनीति में लाते हैं ये गलत बात है सर।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने बात रखी। फेसबुक पर भी बहुत सारे श्रोता हैं जो हमारे पाठक हैं वो अपनी राय रख रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो भी अपनी राय रख रहे हैं। राय हकीम लिखते हैं कि 70 सालों में सेना को कभी राजनीतिक हथियार नहीं बनने दिया गया और भारत में लोकतंत्र की सफलता का यही रहस्य है और अब उल्टी गंगा बहाने जैसा प्रयास हो रहा है, उनका ये कहना है। राहुल आपसे जानना चाहेंगे, ये एक हमारे एक पाठक हैं और श्रोता हैं जो कि सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक उल्टी गंगा बहाने जैसी कोशिश है, क्या कहते हैं आप?
मैं इनसे सहमत हूँ क्योंकि एक जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो मिलिट्री के लोग हैं वो अपॉइंटमेंट्स के लिए पॉलिटिकल लॉबिंग करते हैं और फिर वो ये भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनको कोई नौकरी मिले, जैसे गवर्नरशिप मिले या पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन की चेयरमैनशिप मिले या एम्बेसडरशिप मिले, और काफियों को मिलती भी है। और ये जब ये सर्विस में होते हैं ये सरकार की हाँ में हाँ भरते हैं, तो ये जो चीज है ये पोलिटिसाइजेशन है, ये पिछले 5-10 साल से काफी बढ़ रही है और पिछले 4-5 साल से तो बहुत ही बढ़ रही है। तो ये मैं सोचता हूँ कि एक खतरनाक चीज है, क्योंकि आर्मी को, जैसे आपके श्रोताओं ने भी बोला है कि आर्मी को और मिलिट्री को सियासत से बिल्कुल दूर रहना चाहिए।
जी कुछ श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
जी मेरा नाम अरविंद है, मैं फिरोजाबाद यूपी से बात कर रहा हूँ।
जी अरविंद
जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये आज के जो राजनीतिक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो अपनी पराकाष्ठा से आगे बढ़ के काम करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मिलिट्री को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक संवेदनशील विषय है, और अगर जो है फौज ही इसमें संलिप्त हो जाएगी तो इसका बहुत ही गहरा दुष्प्रभाव भारत की जनता पर पड़ सकता है।
शुक्रिया अरविंद, आपने अपनी बात रखने के लिए। एक और श्रोता हमारे साथ हैं जी, जल्दी से अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
सर, हरपाल यादव रेवाड़ी से बोल रहा हूँ।
जी हरपाल जी।
सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो राजनीति का विषय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, ये न केवल चिंताजनक है बल्कि अफसोसजनक भी है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ एक और श्रोता है, जल्दी से अपना नाम बताएं और इस विषय पे आपका क्या कहना है, अपनी राय रखें।
रामेश्वर रेवाड़ी हरियाणा।
जी
प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा सही कहा है, कोई गलती नहीं है, सब करते आए हैं, प्रधानमंत्री भी करते आए।
आपका मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ गलत नहीं कहा है। चलिए एक एक बहुत बहुत शुक्रिया। एक और हम राहुल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में हम कि फौज को राजनीति से अलग रखना कितना ज़रूरी है, और एक आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए लोकतंत्र में कि सेना और राजनीति के बीच में जो संतुलन है वो किस तरह का होना चाहिए, आपको जो क्या लगता है आपको?
पहली बात तो फौज को राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है अगर फौज को हम शामिल करें। हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल तो देख ही लिया है पिछले 50 साल में, जैसे कहते हैं कि हर मुल्क को फौज चाहिए मगर पाकिस्तान को एक मुल्क चाहिए, यही कहा जाता है। दूसरी बात, इसका जो सिविलियन कंट्रोल है ये पूरा होना चाहिए, और फौज की जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए, ना पॉलिटिक्स का ना ब्यूरोक्रेसी का। और फौज की काबिलियत है कि वो अपने अफेयर जो है वो पूरे अपने आप मैनेज करें, और इसमें दखल अगर आप देंगे तो आपको ये खतरा होगा, और ये आगे चीज जो है ये बहुत डेंजरस हो सकती है।
शुक्रिया राहुल, एक बार फिर से श्रोताओं के पास चलेंगे। जी अपना नाम बताएं और इस विषय पे आपका क्या कहना है, अपनी राय रखें।
हेलो
जी।
हाँ जी, अभी बोला सर, विषय का पता नहीं है, अचानक ही मैं हमारे पास रेडियो था, थोड़ा सा बता दो हम बोल।
जो विषय है कि सेना में जिस तरह से राजनीति का, जो राजनीति में सेना को लाया जा रहा है उसका क्या होगा इस पे, लेकिन हमारे पास एक और श्रोता जुड़ चुके हैं। जी बताएं।
जी हाँ थे सर, नमस्ते सर, हम बिहार से झाझा बोल रहे हैं सर।
जी
हाँ, रविंद्र कुमार सिन्हा सर।
जी रविंद्र, बताएं अपनी राय रखें।
आप कनिका, आपको पूरे बीबीसी परिवार को धन्यवाद सर। कनिका नरेंद्र मोदी जो बोल कर रहे हैं सर, कनिका वो देश के हित में ही सब कर रहे हैं सर, वो नाजायज नहीं कर रहे हैं सर।
जी आपका कहना है कि प्रधानमंत्री जो है देश के हित में कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। उर्मिलेश, जैसा कि हम पहले भी राहुल जी से बात कर रहे थे कि आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, सेना और राजनीति क्या इनको अलग अलग रखा जाना चाहिए?
बिल्कुल, मेरा मानना है कि बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए, और किसी भी लोकतंत्र में आर्मी जो है वो ठीक है, उसका अपना एक स्वतंत्र उसकी अस्मिता है और उसको अपने जब फैसले अपने ढंग से लेना चाहिए, लेकिन सिविलियंस के मामले में जब वो इंटरवीन करती है आर्मी किसी भी स्थिति में, तो उसका मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम है इस देश में डेमोक्रेसी के हिसाब से। तो आई मीन पार्लियामेंट्री जो कमेटीज हैं, बहुत सारी दुनिया की डेमोक्रेसीज में ऐसा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री जो जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, खासकर डिफेंस की हो या इस तरह की, और नई 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 मैकेनिज्म डेवलप किए जा सकते हैं जो एक एक तरह से देख रेख भी करे। दूसरी बात जो बहुत जो मुझे अलग ढंग से लगती है, जो भारत में नहीं सोचा जा रहा है इस समय, कि जब आप अपने पड़ोसियों से आसपास के मुल्कों से बेहतर रिश्ते रखेंगे तो अपने आप आर्मी का जो रोल है खासकर लड़ाई का और अन्य चीजों का जो सीमा पर, वो धीरे धीरे शांति की तरफ जाएगा और रक्षा बजट भी कम होगा, इससे आप अपने देश के एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर खर्च कर सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आर्मी और सर्जिकल स्ट्राइक का जिस तरह से ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, जिस तरह से सेना नायकों को राजनीतिक ओहदेदार की तरह बिहेव करने दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये इसलिए दिया कि हमारे रिश्ते जो हैं अपने पड़ोसी मुल्कों से बेहतर नहीं है, और हम इस लड़ाई विड़ाई को ही सारी राजनीति का हिस्सा मानकर चल रहे हैं, डेमोक्रेसी हमारी इससे कमजोर हो रही है। तो ये जो दोहरा रिश्ता है इस पर भी हमें गौर करना चाहिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश, साथ ही राहुल बेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। उन श्रोताओं से क्षमा चाहेंगे जिन्हें कम समय होने के कारण हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। बीबीसी इंडिया बोल में इतना ही, अगले शनिवार को नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत के भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।